আপনার প্রভু ক্লাস ছেড়ে যাবেন আবির্ভাব তিথি শিষ্যের কি কর্তব্য, আর গুরুপাদ জন্ম এই জগতে তার অবদান বৈশিষ্ট্য বর্তমান জগতের সঙ্গে কি আছে, আর তিনি আর একটা প্রশ্ন করছেন যে মনি অবস্থার সঙ্গে কি সামঞ্জস্য আছে, আর আর একটা উনি প্রশ্ন করছেন যে কি আর একটা আজকের দিনের সম্বন্ধে কিছু বলতে আবির্ভূত হয়েছে কেবলমাত্র যুবকের কল্যাণকে দিয়ে या भगवत शक्ति प्रचार करने के लिए भगवत वाणी किस लिए वैसे होता ये प्रश्न आता है वैष्णव जी जगत में आए थे वैसो नारायण था वैश साक्षात नारायण है किंतु वैष्णव जी का आने का एकमात्र तात्पर्य था क्या समस्त जीवों के लिए दिशा निर्देश करना साथ साथ में भगवत तत्व के অনুভব আত্মজ্ঞান আত্মতত্ত্ব এবং ভগবতত্ত্বকে উপলব্ধি করানো এবং জীবকে ধীরে ধীরে আগে বাড়ানো এই ব্যাসদেব জিগা উদ্দেশ্য থাকে। উনি ধীরে ধীরে করতে ক্যা নিষেধ ক্যা বিধি কি উপায় অবলম্বন করেন সে জীব সুখী হয়ে সকতে হ্যাঁ জগৎ মে রে সকতে হ্যাঁ আর জগৎ কে অন্দর উসে চিত্ত ব্যক্তি ব্যক্ত নেই হোগা আর কি উপায় অবলম্বন করেন সে ও আত্মতত্ত্বকে জান নেই আর ভগবানকে সাথে এই জগৎকে সম্বন্ধ জোড় করলে আগে যা সকতে হ্যাঁ উসকে লিয়ে বৈষ্ণব জি নে চেষ্টা কিয়া চেষ্টা কিয়া উস সময় বৈষ্ণব জি নে ইয়ে ভি অভিনয় করা বিনা গুরু কি কৃপা সে কুছ হো নেই সকতা वैसे साक्षात नारायण होने पर भी स्वतत्वज्ञ होने पर भी जब तक गुरु कृपा नहीं हुए तब तक सब कुछ अधूरा रहा अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष इस जगत तक ही सीमित रहा जगत से पार जाने का कोई भी उपाय नहीं देखा उन्होंने जब नारद जी के साथ उनका मिलन हुआ और नारद जी के साथ भाव का विनिमय हुआ और नारद जी के विचारों को उन्होंने स्वीकार किया तब कहीं जाकर के कुछ भगवत तत्व की अनुभव जगत के लिए प्रकाश किया नहीं तो अपना अनुभव से जगत का कल्याण होना नहीं था उसमें जब जीव भ्रमित हो जाते थे क्यों भगवान भगवत तत्व के जो अनुभव है और गुरु तत्व के जो अनुभव है दोनों में बहुत फर्क है।
धन्यवाद प्रभु
किया गुरु पूजा प्रतिदिन होता है आज के दिन क्यों उसमें हम लोगों ने आलोचना की थी उस दिन 28 तारीख सुबह या बाद में हुई गुरुपाद पद्म की पूजा प्रतिदिन होता है सर्वत्र होता है और गुरु पूजा नहीं करने से भगवान संतुष्ट नहीं होते ये सब हमने किंतु उसी दिन विशेष क्या है तो बतलाते हैं भगवान कृपा करके जीव के प्रति दयाद्र होकर के समय उपयोगी अपने परिकरों को इस जगत में भेजते हैं या किसी योग्य जीव में अपने शक्तियों को संचारित करके प्रेरण करके भेज करके सबको संचारित करके जगत का कल्याण कराते हैं। दो प्रकार से होता है एक साधन सिद्ध एक नित्य सिद्ध भगवत परिकर और एक होता है मध्यम अधिकारी जीवों के अंदर में कृपा शक्ति दे करके उन जीव को साधन में भी उन्नत कराते हैं और जगत के जीव को भी मदद कराते हैं। अधिकांश समय उत्तम अधिकारी भी आते हैं भगवत परिकर भी तो मध्यम अधिकारी में आते हैं आकर के जगत का कल्याण करते हैं और एक जगह में आते हैं इस जगत से साधन करके तो उत्तम अधिकारी में पहुंच गए वो लोग यदि गुरु का कार्य करें तो वहां पर थोड़ा सा समस्या हो जाता है वो अपने अधिकार से समस्त जीव को देखते हैं उस समय बड़ा समस्या उस समय साधारण जीव उनके विचार को ले नहीं पाते हैं, और कुछ योग्य जीव जो मध्यम अधिकार से ऊपर जाने वाला वो तो उनके सामने से कृपा प्राप्त करके बहुत आगे झटझट उठ जाते हैं। ऐसे एम ए क्लास के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और वो एक क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनका तो योग्यता नहीं है ये कहना भूल है, किंतु संभव नहीं है। वो के जी क्लास के दीदी मनी पढ़ाती है और लोग पढ़ाते हैं। इस तरह से मध्यम अधिकारी जीव इस जगत के साधारण व्यक्ति को भी कुछ कल्याण उपकार कर सकते हैं। उत्तम अधिकारी होने पर इन्हें गड़बड़ आता है। अच्छा, और गुरुपाद पद्मा जो जगत में आते हैं इसमें बतलाया वो तो जगत में आ रहे हैं भगवत इच्छा से या भगवत शक्ति से प्रेरित होकर के। उस दिन समस्त जीव उस स्थिति को क्यों माने बताते हैं, जैसे वो जगत में आविर्भूत हुए ऐसे हमारे हृदय में वो आविर्भूत हुए। अच्छा, ये यदि किसी की चेष्टा है तो कैसे आविर्भूत होगा हमारे हृदय में, ये आविर्भूत स्थान बनाना है उनके लिए, गुरु जी के लिए। अच्छा, यदि प्रयोजनीयता अनुभव हुई तब तो, और उसके लिए चेष्टा तभी करेगा। कैसी चेष्टा तो बताया कि उनके आविर्भाव तिथि की पूजा करते हैं, भगवान उनके परिकर को भेजे हैं, भगवान के उन परिकर आने रहे हैं, उनके सम्मानार्थ हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तिथि की तिथि की, और वो आ रहे हैं उनकी। और इससे क्या होता है, प्रभु कहते हैं मैंने अपने जनों को भेजा, उन्होंने सम्मान किया, इसलिए सम्मान मेरा सम्मान है, मेरी पूजा है। इसके वजह से जब भगवान की इसमें वो जो गुरु की पूजा हुई, ये पूजा हुई भगवान की, और जब भगवान की पूजा हुई और भगवान संतुष्ट हो गए तो क्या करेंगे, आपके हृदय में उनके लिए, उनको समझने के लिए, उनको उनके तत्व को जानने के लिए, उनके साथ आपका और संबंध जोड़ने के लिए एक योग्यता दे देंगे। नहीं तो जीव यदि अपनी चेष्टा से साधुओं को समझने के लिए हजार चेष्टा कर ले, लाख चेष्टा कर ले, कोटि उपाय कर ले, और उनको लाख लाख रुपया भी ला करके दे दे, या उनके खूब सेवा कर ले, किंतु बिना हरि कृपा मिले न संतान। वहाँ पर बताया भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनुष्य, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनुष्य तरी अच्युत सत्संगम दैव परावर्ष जायते रति। परावर्ष भगवान है, भगवान में रति होता है जो सत्संग होता है। अब ये जो सत्संग में पहले रुचि होना ये भगवान की कृपा से हुआ, बिना भगवत कृपा से सत्संग में रुचि नहीं हुआ। संतानों पहचान नहीं सकते, जीव अपना दिमाग से बुद्धि से नहीं पहचान सकते। जब इस बात को जीव समझते हैं कि मैं अपने चेष्टा और अपने बुद्धि से अपने बल से अपने मैं साधु के निकट नहीं पहुँच सकता, तब वो उपाय करते हैं। क्या कि मैं कौन सा उपाय अवलंबन करूँ जिससे कि साधु के तत्वों को मैं जान सकूं, उनके निकट जा सकूं, उनके आश्रय पा सकूं। तो ये जो आविर्भाव का दिन है उसमें जबकि जी सचित्त होकर के, क्या सचित्त, चेतन भागवत में लिखा है भगवान ने जन्मतिथि यमत पवित्र वैष्णव जन्मतिथि समत चरित्र। भगवान के जन्मतिथि जैसे पवित्र है ऐसे वैष्णव के आविर्भाव तिथि भी ऐसे ही है। इस बात को जान करके उस तिथि के दिन वो तिथि पालन करने के लिए चेष्टा करते हैं, मतलब उनके सामने में जाने के लिए आग्रही है चेष्टा युक्त है। केवल ये बाहर के आलम्बर नहीं कि मैं बाहर का आलम्बर पूर्ण व्यवहार करके या प्रसाद बांट करके या जो कुछ करके या खूब सजावटा करके मैं जगत से प्रतीक्षा लूंगा, पूजा ग्रहण करूंगा, इसके लिए धारणा करे तो व्यक्तिश्रम है। वो व्यक्तिश्रम नहीं हुआ कुछ तो फल आएगा, किंतु यदि अंदर में ये है उनके आज आविर्भाव तिथि है भगवान की कृपा से, वो आज दिन में जगत में आए हुए हैं, आज के दिन में उनके सानिध्य में जाने का एक बड़ा सुयोग है। जैसे मिनिस्टर या प्रधानमंत्री तो अपना राष्ट्रपति भवन में अपना घर में है, किंतु जिस दिन खुला मैदान में आए हैं उस दिन साधारण जगत के लोगों के लिए थोड़ा सा उपकार हो जाता है। वो लोग कुछ मांग करते हैं तो उस मांग को पूरा करना पड़ता है। आज आए हैं जगत को देखा, हाँ ये लोग हमारे ही तो प्रजा है, यहाँ पर कुछ अपना स्नेह अपना प्रभुत्व हो जाता है। तो भगवान कृपा करके ये सुयोग दिया है कि संतों के सानिध्य में जाने के लिए जीवों को एक उपाय है, नहीं तो गुरु को प्रसन्न कर लेना, उनके हृदय को जान लेना, उनके तत्वों के निकट में पहुंच जाना, उनके कृपा के बिना नहीं संभव है। दो प्रकार से, एक तो भगवत कृपा से, भगवत कृपा से संत मिलते हैं, सत्संग होता है, और अब सत्संग में आने पर सत्संग में रुचि कैसे पूरा रहेगा, बजाय रहेगा, उनके प्रति सबसे बड़ा भारी द्वेष होने की संभावना है। घर गृहस्थी में द्वेष वैषम्य नहीं होता है, साधु के साथ गुरु के प्रति द्वेष होगा, वैषम्य आएगा, तो उसको बजाय कैसे रखेंगे। अधो श्रद्धा तो साधु संग, श्रद्धा थोड़ा बहुत है किंतु साधु संग होने से, साधु कृपा से भजन किया होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा, क्षेत्र से निष्ठा रुचि आसक्ति आगे बढ़ेगा। किंतु ये जो श्रद्धा मूल क्या है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, कृष्ण भक्ति के जन्म मूल है साधु संघ। अब साधु के निकट सुना कि गुरु के वैष्णव के आविर्भाव तिथि पालन करना है, कैसे आविर्भाव तिथि पालन करना है, वो जगत में आए हुए हैं, ये जो आए हुए हैं किस लिए आए हैं, क्या काम के लिए आए हैं, अब उनका आने पर इस जगत में उनका व्यवहार आचार आचरण समस्त जीवों के प्रति कैसा है, इन सब चीजों के उनके कृपा रूपी महाप्रसाद को जगत को वितरण करना है। मैंने उस दिन बोला सुचारू रूप से, सुचारू रूप से, ऐसे सुंदर रूप से उनके महाप्रसाद को हम वितरण करेंगे समस्त जीव लोगों को, साधु हो और वो लोग सहज सरल हो, वो गुरु के तत्वों को विचारों को समझ करके उनके प्रति आकृष्ट हो, जिससे कि वो हमारे प्रति प्रसन्न होंगे, हमारा विचार और व्यवहार को देख के कि वो सुंदर सरल सहज रूप से इसको परिवेशन करना सीखा है, चेष्टा करता है। और नहीं तो यदि सरलता नहीं है सुंदर रूप से परिवेशन करना, सुंदर रूप से यदि परिवेशन करना नहीं सीखा, केवल मात्र दाल चावल रोटी सब्जी महाप्रसाद नहीं है, महाप्रसाद है सबसे बड़ा भारी उनकी कृपा, उस कृपा को परिवेशन करना है। किंतु कैसे करेंगे, समस्त जीव को एकत्रित करके गुरु के महिमा कीर्तन और उनके विचार वैशिष्ट अवदान और वो भगवान की कृपा शक्ति को किस प्रकार से जगत के जीव को देना चाहते हैं। अभी हमारे और भी तो आचार्य बहुत हैं, या महाराज जी वर्तमान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनका क्या है, और मोनिमोचर स्त्री के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर एक कथा सुनाएंगे कि गोपाल जी बताया ना, निर्जन भजन और मौन धारण। मौन किसे कहते हैं, जो कृष्ण चर कथा बागवेदता नाम, कृष्ण चर कीर्तन करते हैं, कृष्ण चर कथा सुनते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, जो कुछ करते हैं इसका नाम है बागवेद। तो ये जो वाग्वेग है, ये यदि वचन का बोलने का वेग नहीं है तो यही है मौन। कृष्ण कथा कीर्तन करना के नाम ही मौन धारण करना है, और कथा कीर्तन नहीं करे तो उसको मौन बोलते हैं। अभी ये मौनिमोक्ष के दिन में पहले ऋषि महर्षि लोग या आज भी संसार में सुबह से लेकर के कोई भी बात नहीं करता, व्रत करते हैं, कोई शब्द उच्चारण नहीं करते हैं। क्यों, आज शाम तक जाकर के हम कोई भी यदि आकर के दिन भर में मुझे भगवान का नाम सुनाएंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम कहेंगे, तब तो मैं उनके साथ मुख खोल के बात करूंगा। ऐसा क्यों, इस दिन के लिए विशेष, इसको बोलते बड़ा अमावस्या, चार अमावस्या बड़ा माना गया। इसमें ये एक अमावस्या है जिसमें बड़ा अमावस्या माघ मास में बतलाया। क्यों, इस माघ मास में अधिक टाइम कुंभ मेला लगते हैं, तो ऐसे ऐसी जगह में पुराणों में और कथा में सुने जाता है कि ये दिन गौरव जी जबकि कुंभ अर्थात अमृत घड़े लेके आए, अमृत घड़ा ले जा करके जबकि उन्होंने चार जगह में बैठा, इसको लेकर के विश्राम किया, एक जगह में नासिक उज्जैन में बैठा, एक हरिद्वार में बैठा, एक वृंदावन में बैठा और इलाहाबाद प्रयाग में बैठा। इसलिए बारह बारह साल के बाद में एक एक युग के बाद में वो तिथि आने पर ये कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला लगता है उस तिथि के 15 दिन पहले से सब लोग आकर के एकत्रित होते हैं और तिथि के 15 दिन बाद में भी वहाँ करते हैं। देवता लोग आए थे कि इस कुंभ मेला में जो साधु लोग जुड़े हुए थे सब भगवान के गुणगान नाम संकीर्तन कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को अमृत मिल जाएगा। तो उन लोगों ने बोला, देवताओं ने, ठीक है भाई, तुम लोग भी भगवत कीर्तन करते हो, गुणगान भगवान के नाम रूप गुण चिंतन कीर्तन करते हो, तो हम लोग, हमें ये भगवान इसका फल दे दो, हम तुमको अमृत दे देंगे, तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। ये विचार आया था। ऋषियों ने आज के दिन में अमावस्या के दिन में देवताओं के आह्वान सुन करके सब मौन धारण कर लिए, बोलते हमें नहीं चाहिए, मौन धारण कर ली, कोई नहीं देना चाहता है भगवान के नाम और भगवान के भजन का फल। देवता लोगों ने बोला हमें दे दो, हम अमृत अभी दे देते हैं, और नहीं देना चाहते। अब जबकि देवता लोग सब हार कर सुनकर चले गए, बाद में सुबह से शाम तक ये लोग रह गए। शाम को सब ऋषि महर्षियों ने भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दी। अब कीर्तन शुरू कर दी तो बेनी माधव प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हो गए, हरिद्वार में हरिहर के रूप में प्रकट हो गए, वृंदावन में कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, और विचार्य नासिक उज्जैन में वहां पर क्या भगवान है पंडरपुर है, उसका नाम क्या है, विठलनाथ जी वो नासिक उज्जैन में प्रकट हुए थे, फिर वहां से पंडरपुर में पहुंच गए। भगवान प्रकट होकर के भगवान प्रसन्न हो गए, वो तुम लोगों ने हमसे हमारा नाम को बेचा नहीं, अर्थात देवताओं को दिया नहीं, तुम लोगों को अमृत नहीं मांगा, आज मैं परम अमृत स्वरूप तुम लोगों को कृपा करता हूँ। इसके लिए चार जगह में ये मेला लगते हैं। विशेष करके ये अमावस्या के दिन लोग बाग कोई भी भगवत नाम कीर्तन के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो जब इस दिन मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लोग बाग, और उस समय की बात है, मैंने उन लोगों से चर्चा की थी, उस साल इलाहाबाद में कुंभ था, क्योंकि अब की बार जैसे कुंभ लगा तब की बार 15 दिन के एक महीने का कुंभ है कहाँ, हरिद्वार में, और 15 दिन क्या है, वृंदावन में, ऐसे ही उस बार का इलाहाबाद में कुंभ था। सभी लोग कुंभ मेले में साधु संत लोग सब जा रहे थे, ये लोग भी गंगा स्नान करते थे, तो गंगा स्नान करके आए। तो अब इस तिथि को आश्रय करके या तिथि को अवलंबन करके महाराज जी आए आए तो उनके घर में भी क्या हुआ, उनके घर में ऐसे ही शाम के समय में हरि कीर्तन होता है, तो आज और बहुत दूर से कीर्तन होने लग गया, सब कीर्तन आदि किया। तो महाराज बोलते हैं, मैं शुरू से ही जब से मेरा होश संभाला तब से वो लोग रामानु संप्रदाय वैष्णव थे, वो लोग रामायण पाठ करते थे, हमारे घर में वैष्णव संत आते रहते थे, उनका आतिथ्य मैं कर सेवा करता था, और मैं क्या करता कि रामायण लेके बैठता पढ़ने के लिए, उनसे पहले तो मैं सुनता, बाद में मैं पढ़ने बैठता तो मेरा आंख के आंसू को कभी सूखते नहीं थे, मैं उधर में उनके साथ में जब उठा। तो उस समय हम लोगों ने सुना ना, वीरवान होनहार के होते हैं सीखने पास, यदि भगवान के कोई परिकर होते हैं तो उनके शुरू से ही भगवान के कथा में कीर्तन में भगवान के जनों में उनका रुचि होता है। अच्छा, अब इतना होने पर भी जब महाराज जी घोड़िया इधर में आए तो मैंने बतलाया कैसे, जबकि उनका अपने संस्कार हुआ इसके बाद में बारी आई दीक्षा लेने की, जब दीक्षा लेने की बात आया तो उनके गुरु जी आए थे, तो बोले देखो हम तो तुम्हारे माता पिता को दीक्षा दिया, हमारा लड़का तुमको दीक्षा दिया। तो लड़के आए तो उनसे महाराज जी ने प्रश्न पूछा, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, बोले हमारा समय समाधान कर देंगे तभी मैं दीक्षा लूंगा, किंतु समाधान नहीं कर सके और उनका जवाब न दे सके, मुंह लाल हो गया, तमतमा गए, बिल्कुल दुखी हो गया, रुआसू हो गए, उठ करके वहां से चल दिया, फिर कभी आए नहीं, बोले इस घर में जाना नहीं, इतना अपमान किया है। वो तो चले गए, महाराज जी गौरी वैष्णव से मिले, और किस प्रकार से मिले तो मैंने सब बोला, इसके बाद में उन्होंने दीक्षा ली। किंतु दीक्षा के साथ साथ में वो परम गुरु जी महाराज जी के हृदय के विचारों को, भावनाओं को और उनके सब कुछ संग्रह करना शुरू कर दी। महाराज जी बोलते हैं मेरे को जब से गोस्वामी ग्रंथ में रुचि रहा और गोस्वामी ग्रंथ का अनुसरण करना मेरा काम बन गया, प्रचुर सेवा की, किंतु साथ साथ में हरिनाम और गोस्वामी ग्रंथ अनुसरण। बाद में महाराज जी जहाँ कोई भाषण देते थे महाराज जी दिखा, महाराज जी बोलते हैं मैं प्रभुपाद जी जब गोलियों पड़ा कि जंगल साफ करते करते मेरा दिन समय निकल गया, मैं जो काम करने हैं वो नहीं कर पाया। तो महाराज जी बोलते हैं इस बात के ऊपर मैंने बहुत विचार किया, गुरु महाराज जी से मैंने बात किया, तब गुरु महाराज जी ने मुझे कुछ विचार बतलाया। स्वचन चरितार्थ मैंने चतुर्थ परिच्छेद खूब ढंग से देखा। जैवधर्म महाराज जी बोलते हैं मैं 70-75 बार मैंने जैवधर्म पढ़ ली, जबकि मैंने समस्त विचारों को देखा कि समस्त जीवों के पीछे कि जीवों को जीवों के हृदय में क्या है, एक संपत्ति है, प्रेम रूपी संपत्ति। वो प्रेम चाहता है, आनंद चाहता है, किंतु उस जीवों को जबकि अल्लाह की शक्ति के संदेशा, उनका खोज खबर या उनके किस प्रकार से उनके सानिध्य में जा सकते हैं, ये जो जब तक उन संबंध से युक्त नहीं किया जाए और वहां तक नहीं पहुंचता है, आज चारों तरफ वो टटोलता रहे, आनंद कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से हम उस सेवा को प्राप्त कर सकेंगे या हम खुद ही आनंद प्राप्त करके और जलानंद को, ब्रह्मानंद को, जगत की तुच्छ चीज को भूल जाएंगे, ये कैसे संभव है। तब शास्त्र में देखा गोपीवा बिना ना बाई कृष्ण से, और विभिन्न उदाहरण उन्होंने दिया देखा, चक्रवर ठाकुर जी के विशेष करके विचारों को, रूप गोस्वामी के विचारों को महाराज जी ने संग्रह की, और महाराज जी ने देखा कि कलयुगी जीव क्षुद्र बुद्धि क्षुद्र आयु और साधन करते 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 समय तक निकल जाएगा, किंतु शुद्ध साधन की यदि पंथा उसको नहीं मिला और रास्ता नहीं मिला तो जीव कुछ कर नहीं सकते हैं। इससे इन जीवों को शुद्ध कुछ साधारण श्रद्धालु भी देखा तो इन लोगों को वो दिशा निर्देश कर देना है। इसके बाद में एक बार यदि वो जान जाते हैं श्रेष्ठ वस्तु ये है, इसके बाद वो साधन करेगा, साधन के क्रम और साधन के क्रम को जान के करेगा। वो ये नहीं जानता है मेरा लक्ष्य क्या है, जब तक वो नहीं जानता है तब तक वो क्या करेगा, और वो किसी से संबंध युक्त नहीं है तो भजन करेगा तो उनके भजन को उसका फल देगा कौन, किसी के साथ युक्त ही नहीं है, बोल दिया हरिनाम करने को हरिनाम करता है, किंतु हरिनाम से क्या होगा, हमारा हरिनाम किसके लिए कर रहे हैं, कौन सुन रहा है और ये हरिनाम के द्वारा क्या होगा, हमारा ये हरिनाम को उठा करके कहाँ तक पहुँचाएगा, या कोई सुन रहा है कि नहीं हमारा हरिनाम, हम जो मंत्र जप कर रहे हैं मंत्र की देवता कौन है। यदि कोई संबंध ही नहीं है और यदि किसी के साथ में मतलब ही नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, या तो क्या होगा कर्म या कर्मार्पण, नहीं तो बस अधिक से अधिक संगत आरोप सीधा इससे आगे नहीं होगा, नामवाद या वो भी नहीं, नाम अपराध यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसलिए पहले ही जीवों का यदि संबंध ज्ञान हो और संबंध का जो देवता है वो वही एकमात्र हमारे लिए महापुरुष के विचारधारा में संप्रदाय में ये श्रेष्ठ है, ये हमारा लक्ष्य है और ये जाना है, ये हमारा सर्वोच्च है, तब जो कुछ साधन करेगा, जैसे संबंध हो गया पिता से माता से, और वो बच्चा यदि बिगड़ता भी है, बर्बादी भी करता है, नष्ट भी कर देता है, झगड़ा झंझट भी करता है, दौड़ भी लेता है, कुछ नहीं भी करता है, तभी माता पिता के समस्त संपत्ति के हकदार हो जाता है। इससे महाराज जी ने देखा ये लोग जो कुछ अपना अपना ड्यूटी बांट दिए हैं, साधन का क्रम वर्तमान में दे रहे हैं, ये साधन का क्रम कहीं तक तो कुछ गोस्वामियों के विचारों का फॉलो किया, महाप्रभु के विचारों का, और कहीं पर बिल्कुल ही टच नहीं करता है। वैदिक भक्ति चारों संप्रदाय के आचार्यों की तरह वैदिक भक्ति और तरक्की होते चले जा रहे हैं। यहाँ क्या था वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति राग को अनुरागमय भक्ति को लक्ष्य करके कुछ नियम श्रृंखला के साथ चलना था, और अनुराग तो नष्ट हो गया और अनुराग जानता ही नहीं है, और अपना जो ऐसा कोई जीव नहीं है कि ढूंढता नहीं है आनंद और सुख, भजन करने भी आया तभी चाहता है मुझे कोई स्नेह करे, मेरे को कोई तत्व ज्ञान दे, मेरे को कोई सिखाए, आश्रय मुझे मिले, है सब कुछ चाहता है लेकिन उनको मिलता नहीं। तो बेटा कौन, इसका मालिक कौन, आश्रय विग्रह कौन? प्रभुपाद जी ने बताया, एक आश्रय जाती विग्रह के अनुगत्य में रह करके सभी लोग अपना साधन करें। और आश्रय जाती विग्रह कौन है ये तो पता नहीं है। मूल विषय वस्तु एक है, आश्रय जाती विग्रह के अनुगत्य में विषय वस्तु की सेवा करना है। ये आश्रय जाती विग्रह जानते नहीं, वहां पर किसको करें? कोई बोलता है नित्यानंद को आश्रय जाती विग्रह, कोई बोलता है क्या नाम है अतिथिचार्य की या गदाधर पंडित, कोई गौर विष्णु प्रिया को बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। किंतु हमारे रुद्रनाथ के विचार में अल्लादिनी शक्ति स्वरूपिनी श्रीमती राधारानी उनके जो वो है मूल आश्रय, उनके परंपरा में स्वरूप रूपानुग विचारधारा में जो है परंपरा में देखना पड़ेगा उनके मूल, उनके विचार, उनके उद्देश्य कहाँ तक है। वो जानते हैं कि नहीं इन बातों को, और रूपानुगो है कि नहीं, रागात्मिक जीवन है कि नहीं, ये सब चीज देखना पड़ेगा। तो बोलते हैं इसलिए मैंने सब विचार करके प्रत्येक जीव को मैंने उद्भुत करने की चेष्टा की, सही रास्ता पर, सही मार्ग पर। इसमें यदि कोई चिड़ जाता है, इसमें किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो इससे भयभीत होकर के अपने महाप्रभु के विचारधाराओं से अलग होने की जरूरत नहीं। और लोगों तो ये भी हो गया, क्यों राधा रानी के नाम गुणगान कीर्तन करेंगे या राधा रानी के विचार और वैशिष्ट्यों का कीर्तन करेंगे? महाराज बोलते नहीं, यह हमारा संप्रदाय का मूल चीज है, मूल तत्व है। और कब जानेगा? है जान लिया, सुन लिया, यहाँ मुझे पहुंचना है, ये मुझे मेरा सब कुछ है। आप जान सुन करके आप साधन करेगा, अब जो कुछ साधन करेंगे उधर ही जाएगा। नदी के पानी को रोकने से रुकेगा तो है नहीं, समुद्र में जाएगा ही जाएगा, किंतु समुद्र में पूरा नहीं जाएगा। जो स्वच्छ निर्मल जल और शुद्ध जल उसको सूर्य देवता स्वीकार करके ले लेंगे, और गंदा और मिश्रण और भारी और सब कुछ समुद्र में जाकर के फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही जीवों की जो चित्तवृत्ति है, यदि सूर्य देवता से संबंध है, ऐसे शुद्ध पुरुष से संबंध है, तो जीवों के जो सद्गुण है, सद्विचार है और उनका आत्म सत्ता है, वो लेकर के भगवत पाद में पहुंचा देंगे। इससे पहले ही ऐसे रूपानुगों गुरुवर्गों की विचारधारा में आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो महाराज जी का ये वैशिष्ट्य है, महाराज जी समस्त जीवों को चेष्टा किया, जब वो दीक्षा देते भी नहीं थे तभी हमारे गुरु भाइयों को और लोगों को, जितने लोगों को महाराज जी ने सिखाया या हरिकथा बोले, कीर्तन किया, जहां जो कुछ किया, आखिरी तक लेकर के महाराज जी ब्रज में पहुंचा दिया ब्रजवासियों के। जैसे महाप्रभु जी के विचार है, आराध्य भगवान ब्रजेश्वर सद्धाम वृंदावनम, रम्या काशी उपासना, महाराज जी के विचार में ये रम्या काशी उपासना ये सर्वथा आगे रखा। इसके लिए उनके साधारण लोग उनके विचार को नहीं समझ पाते, उनके दिमाग में आता नहीं। वो अधिकारी है, वो कीर्तन करते हैं, उनकी चिंता चर्चा या समालोचना करना, हम तो इतना बड़ा गुरु नहीं है। वो जो कुछ करते हैं शास्त्र के विचार में यही करते हैं, हम साधन करते हैं, किंतु लक्ष्य तो हमारा वही है, वही होना चाहे। आराध्य भगवान वशिष्ठ तो नहीं और श्रद्धाम वृंदावनम, ये दो चीज तो मानना पड़ेगा। भगवान वशिष्ठ आराध्य है और उनके धाम, धाम बलदेव प्रभु या हमारा आत्मसत्ता। आत्मसत्ता यदि नहीं बना, आत्मा का यदि अभी बीज के रूप में जो सूक्ष्म रूप पड़ा है उसका यदि सत्ता नहीं बना, बल नहीं मिलेगा, तो हम बलवान नहीं होंगे, तो आगे चल नहीं सकते हैं। इसलिए पहले भगवान, इसके बाद में सत्ता, जीव सत्ता, आत्मसत्ता। आत्मसत्ता के बाद में क्या होगा? तब आया रम्या काशी उपासना। किस प्रकार से हम सत्ता में प्रतिष्ठित होने पर, हम बलवान होने पर हम सेवा करेंगे, सब रम्या काशी उपासना, ब्रजबोध वर्ग न जा कल्पिता। तो इन बातों को गुरु सिखाएंगे, शास्त्र में सर्वत्र होने पर भी हमारे अंदर प्रेरणा देंगे कौन? बिना सदगुरु का ये प्रेरणा नहीं मिलेगा। गुरुकरण कर लिया या मंत्र ले लिया, जप कर लिया, शुद्ध है कि न शुद्ध है संबंध नहीं है, तो ये मंत्र फलीभूत नहीं होगा। इसके लिए महाराज जी का शुरू से प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा दिखाने जाता है और आचार्यों में गुरुवर्गो में। वो लोग विशेष अधिकारी जीव को कृपा करके कुछ दे दिया या गुरु मंत्र गुरु के साथ संबंध होने से गुरु कृपा से उनके हृदय में आविर्भूत हुआ। और महाराज जी सबसे सचेत है जीवों को इस रास्ता में लाने के लिए, नहीं तो आज वर्तमान में ऐसा आचार्य देखने को नहीं मिलेगा, संभव नहीं है। ऐसा सत्साहस नहीं है किसी को, सब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? अभी संसार के अंदर में कुछ ना कुछ उसका खिंचाव है, संबंध है। क्यों डरते हैं बोलने के लिए? वो हमारे कृष्ण चर्चा में कृष्णदास को बड़े समय बतलाया है, अब तो उससे नहीं यह अधिकार। और भक्त कोकिल खाए प्रमाण मुकुले, अभक्त पुष्ट से क्या तिक्त लिंग फले, ज्ञान लिंग फले। तो ऐसे गाली दे दिया। ऐसे महाराज जी अपने इस महाप्रभु के विचारधारा में प्रतिष्ठित आचार्य इस समय चक्रवर्ती ठाकुर जी के बाद में भक्तिमय ठाकुर जी, भगवान सरस्वती ठाकुर है और गुरुवर्ग प्रकाश किया।